जैसे आपका टॉपिक है आज का राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों एवं गुणों का विकास, दीदी के जीवन में ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है, तो हम सभी एक बार दीदी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति। आप पिछले दो दिनों से सुन रहे हैं राजयोग के अभ्यास से हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। उन्हीं में से एक प्राप्ति है कि आत्मा में अंतर्निहित गुणों और शक्तियों का विकास होता है। जीवन में सफलता के लिए या विशेषकर जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, जब किसी भी प्रकार के संघर्ष होते हैं, तभी हमें विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है। और यदि वो शक्तियां हैं तो फिर हमें जीवन के उतार चढ़ाव पार करने में मुश्किल नहीं लगती है। तो यही कारण है कि हम प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करें और उनके द्वारा अपनी इन शक्तियों को विकसित करें। तो वैसे तो जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो दो प्रकार की शक्तियां हम देखते हैं। तो भौतिक शक्तियां हैं जिससे संसार चलता है, प्रकृति में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। आज हम कहेंगे सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, से कितनी ही शक्तियां हैं, भौतिक शक्तियां हैं जिससे जगत संचालित होता है। लेकिन जब हम मानव जीवन की शक्तियों की बात करते हैं तो फिर ये दो प्रकार की हैं, बाह्य शक्तियां और आंतरिक शक्तियां। बाह्य शक्तियों में है शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, पद की शक्ति, और आंतरिक शक्तियों में है मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्ति, चारित्रिक शक्ति, ये सब हमारी आंतरिक शक्तियां हैं। तो हम देखते हैं बाह्य शक्तियों का विकास भी मनुष्य करते हैं तो जीवन में सफलता पाते हैं। जैसे आज शारीरिक क्षमता का विकास करते हैं, कुछ लोग असाधारण प्रदर्शन करते हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आ जाता है। ओलंपिक्स में लोग 500 किलो का वजन उठाते हैं, हम सुनते हैं, गोल्ड मेडल जीतते हैं, या कोई बालों से ट्रक खींच लेता है, या कुछ इस तरह के प्रदर्शन करना। हमारे यहाँ भी एक ब्रह्मा कुमारी बहन है जो बालों से ट्रक खींच लेती हैं और उनका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, उन्होंने कई बार इसका प्रदर्शन किया है। तो ये शारीरिक क्षमता लोग जो विकसित करते हैं, धन की शक्ति, पद की शक्ति भी मनुष्य को समाज में स्थान दिलवाती है, सम्मान होता है उसका। लेकिन राजयोग के द्वारा हम आंतरिक शक्तियों की बात कर रहे हैं तो बौद्धिक शक्ति से हम देखते हैं आज इतना विकास हुआ है दुनिया में। आज हम 21वीं सदी में इतने सुख के साधन जो देखते हैं, ये सब वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता का कमाल है। अनेक वैज्ञानिकों ने बहुत इसके पीछे एकाग्रता से कार्य किया। स्टीफन हॉकिंस का भी नाम हम सुनते हैं जिन्हें आइंस्टाइन के समकक्ष माना गया। तो हालांकि जीवन भर उन्होंने अपाहिज स्थिति में अपना जीवन बिताया, अभी कुछ वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हुई। उनका गर्दन से नीचे का पूरा भाग जो था वो कोई बीमारी के कारण जो है वो बिल्कुल अक्षम था और व्हीलचेयर पर ही वो रहे पूरे जीवन भर, लेकिन उनका दिमाग जो था वो पूरा सक्रिय था। तो उसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से भी वो लोगों से संपर्क में रहते थे और जो भी उनके अपने क्या बोलेंगे शोध कार्य थे वो उसको उसके द्वारा प्रकट करते थे। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ऐसे वैज्ञानिक उस जगत में हुए हैं जिन्होंने संसार में ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार किया है अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर। मानसिक शक्ति की जब हम बात करते हैं तो उच्च मनोबल के आधार पर इंसान असंभव को भी संभव करने की ताकत रखता है, क्योंकि मन की शक्ति का भी महत्व है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ऐसे भी हम मिसाल देखते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। गरीब परिवार में पैदा हुए, पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, मांग मांग कर वो पढ़ते थे। और फिर क्योंकि मनोबल ऊंचा था तो कभी भी जिंदगी में हार होते हुए भी, अनेक बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हार होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जानते हैं कि कैसे वो है ना अपने बाल्यकाल में किन अवस्थाओं से गुजरे और आज वो हमारे देश को बहुत कुशल नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके बारे में भी अब सभी जानते हैं, पहले तो शायद नहीं जानते होंगे लेकिन अभी जानते हैं कि एक आदिवासी स्थान से गांव से होते हुए ना बहुत अधिक उच्च शिक्षा नहीं भी प्राप्त की उन्होंने, लेकिन और उनके जीवन में भी संघर्ष तो कम नहीं रहे, उन सबसे पार करते हुए भी आज वो देश के सर्वोच्च पद पर हैं और एक महिला होते हुए। ये है मनोबल। जब परिस्थितियां मायने नहीं रखती कि क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन जो करना है व्यक्ति जो ठान लेता है अपने जीवन में वो फिर वो करता ही है, इसको मनोबल कहा जाता है। तो योग से हमारे अंदर ऐसी शक्ति आती है। और नैतिक और चारित्रिक शक्ति अगर इंसान में है तो वो महान हो जाता है, संत हो जाता है। जैसे हम महात्मा गांधी कहते हैं तो उनको महात्मा क्यों कहते हैं हम ना, तो उनके अंदर वो नैतिक और चारित्रिक बल था, इसके आधार पर वो महात्मा कहलाए। तो ये शक्तियां हमारे जीवन में आने लगती हैं। कई बार कुछ मनुष्य सोचते हैं कि अगर हम राज्यों का अभ्यास करेंगे तो क्या कोई सिद्धियां हमें मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कुछ संत महात्मा ऐसी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। मतलब जैसे वो किसी को भभूत देंगे और कहेंगे कि आपका रोग दूर हो जाएगा, आपका कष्ट निवारण हो जाएगा, या कोई मंत्र जपेंगे और मंत्र दे देंगे और कहेंगे कि ये मंत्र जपेंगे तो इसकी ये सिद्धि मिलेगी आपको। जैसे आजकल भी हम एक सुनते हैं कि वो कुछ पर्ची निकाल करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, माना कुछ चमत्कार जैसी बातें हम सुनते रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि इस प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन होता है तो इससे जरूर जो लेने वाले की आस्था है वो काम करती है। बहुत से रोग दूर हो गया, हो भी जाता है कई बार, जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन निर्भर करता है कि लेने वाले की आस्था कितनी गहरी है। वो काम करती है, विश्वास काम करता है, लेकिन उससे उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, धन की भी प्राप्ति होती है, पर उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है, उनके पास एक सन्यासी आए और अपने सिद्धियों का वर्णन करने लगे। कहा आपके आश्रम के पास ये जो नदी है इसे मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। उनका अच्छा आपको कितना समय लगा, तो बोला करीब 10-12 साल का समय लगा मुझे ये सिद्धि पाने में। तो उस समय तो वो चुप रहे, कुछ देर में ही उनका दूध वाला आया जो नदी पार गांव से आता था। तो उन्होंने सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा कि तुमने कितने पैसे में नदी पार की। उसने कहा एक पैसे में। उस जमाने में एक पैसा दो पैसा चलता था। तो उन्होंने सन्यासी को कहा कि देखो जो काम मेरा दूध वाला एक पैसे में कर सकता है उस काम को करने में आपने इतने साल लगा दिए, आपने क्यों सन्यास किया है। कहा भगवत प्राप्ति के लिए। तो कहा यही आपने साधना की होती ईश्वर को पाने की तो अब तक आप ईश्वर तक पहुंचे होते हैं। तो जो सच्चे संत थे उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, यानी हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएं, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएं, जिसे कहा जीवन परिवर्तन हो जाता है, यही सबसे बड़ी हमारी सिद्धि है। जीवन में सफलता है, सिद्धि माने सफलता, जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो हम देखते हैं जो भी हमारी कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, वो किन्हीं गुणों और शक्तियों का अभाव है, अंधकार के समान है। जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का अभाव है। अगर प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार खुद ही समाप्त हो जाता है। तो अगर जीवन में हम गुणों और शक्तियों का विकास करते हैं तो फिर ये कमजोरियों और विकारों रूपी अंधकार हमारे जीवन से स्वतः ही समाप्त होने लगता है। अगर हम वर्तमान समाज पर नजर डालते हैं तो क्या स्थिति है। सुन रहे हैं आप दो दिन से, और हम खुद तो अनुभव करते ही हैं रोज कि आज घर घर की क्या दशा है। आज भले ही विज्ञान ने बहुत हमें साधन दिए हैं, तो स्वर्ग होना चाहिए, सुख के साधन है ना सभी के पास कि नहीं है, तो हम इसको स्वर्ग कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे। हाँ, जो सुख शांति है वो क्षणिक है ना, सदा नहीं रहती। और उसका कारण क्या है, क्योंकि हर इंसान के अंदर स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, वैर भावना है, निराशा है, भय है, ये सब समय प्रति समय जैसी परिस्थितियां होती हैं हमारे अंदर आते रहते हैं, और उसके कारण हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। तो कहते हैं घर घर में रामायण महाभारत चलती है, क्योंकि हमारे ये दो शास्त्र मनुष्य की दो कमियों पर बने हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम सभी जानते हैं रामायण की कहानी। जैसे ही राजा दशरथ ने घोषणा की राम को राज्य तिलक होगा, तो जो केकई की दासी मंथरा थी उसे ईर्ष्या हुई, क्यों कुशल्या का बेटा राजा बने, मेरी रानी का बेटा भरत राजा होना चाहिए, क्योंकि रानी केकई ने महाराज दशरथ की प्राण रक्षा की है, उससे प्रसन्न होकर राजा ने दो वर दिए हैं, और ये सही समय है कि केकई को अपने वर लेने चाहिए और भरत को राज तिलक होना चाहिए, वो राजमाता होनी चाहिए। और उसने वही उसके कान भरे कि क्या करना है। केकई को जब बात समझ में आई तो उसने राजा दशरथ से वर मांगे और राम को क्या हुआ, वनवास, और पूरी रामायण की कहानी हुई। महाभारत की कहानी क्या है, भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे, लेकिन कभी भी उनमें प्रेम नहीं रहा। द्वेष किस बात का था, संपत्ति को लेकर, राज्य को लेकर के, और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के दो शब्दों ने। क्या कहा द्रौपदी ने, अंधे का बेटा अंधा। और जैसे ही दुर्योधन ने सुना उसे इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि मुझे अपने इस अपमान का बदला लेना है, और इसीलिए उसने जुए का षड्यंत्र रचा। और न सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन धोखे से उनको हराया, अपने अपमान का बदला लिया। पांडवों को 13 साल वनवास हो गया। वनवास के बाद आए तो क्या बोला, राज्य तो क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन मैं नहीं दूंगा। और इस बात को लेकर के महाभारत का युद्ध हुआ और पूरे कुल का विनाश। यही कहानी है। आज घर घर में ये सब है, रामायण चलती है, ईर्ष्या होती, एक दूसरे ईर्ष्या करते हैं नहीं करते हैं, हाँ इसके पास इतना क्यों, मेरे पास इतना ही है, हाँ एक वो कंपटीशन, दुनिया ही आज कंपटीशन की है। फिर घर घर में भाई भाई में द्वेष है तो वो धन संपत्ति को लेकर के ही है। आज धन संपत्ति के बंटवारे में थोड़ा कम ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि धन को हमने बहुत कुछ माना, सब कुछ मान लिया, बहुत कुछ तो छोड़ो सब कुछ मान लिया। उसके लिए हमारे मूल्यों का कोई महत्व नहीं, हमारे संबंधों का कोई महत्व नहीं। तो फिर ऐसे कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से आज घर घर की ये हालत है, या किन शक्तियों का अभाव है, और उन शक्तियों का हम विकास कर लेंगे तो वही घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं चित्र में अष्ट शक्तियां, आठ शक्तियां ये दिखाई है, मुख्य आठ शक्तियां हैं, और भी शक्तियां हैं। तो ये शक्तियां और इसमें जो मुख्य शक्ति है वो है सहन करने की शक्ति। आज हम देखते हैं किसी की हम छोटी बात को सहन नहीं कर पाते, किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार, चार कहा तो आठ, फिर हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें। माना हमारा भाव क्या होता है, जैसे को तैसा मिलना चाहिए, अगर उसने एक बोला है तो हम चार बोलेंगे, क्योंकि ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं। फिर हम सोचते हैं अगर हम चुप रह गए तो हमारी गलती मानी जाएगी, और जब मैंने गलती की नहीं तो मैं क्यों चुप रहूं, और परिणाम क्या होता है, छोटी छोटी बातें कई बार विनाशकारी हो जाती हैं। कई बार आप देखेंगे समाचार होते हैं ना, समाचारों में आप देखेंगे कि बात कुछ नहीं होती और व्यक्ति ने एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या कर दी, जरा सी बात होती है। अभी जैसे एक समाचार हमने पढ़ा था, यहाँ ही राजस्थान की ही घटना है, कि एक पति को अपनी पत्नी पर शक था, उस बात को लेकर के उनमें कलह हो जाती थी, और एक दिन वो पत्नी देरी से घर में आई, अब पहले ही उसको शक था, और जब वो देरी से आई तो लड़ाई झगड़ा होने लगा दोनों में, और बात इतनी बढ़ गई, जैसे गुस्से में इंसान का विवेक नष्ट हो जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, तो घर में जो चाकू था वो लिया उसने और उसको मार दिया। अब जब वो मर गई तब उसको होश आया कि मैंने क्या कर दिया, पुलिस आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, तो ये सब सोच के उसने अपने लिए भी फंदा बनाया और खुद को भी लटका दिया। अब उनके दो बच्चे थे ना, अब देखो जो बात सच है या नहीं, जिसका उसे पूरा पता ही नहीं, उस बात को लेकर के एक पूरा परिवार तबाह हो गया। रोजमर्रा की जिंदगी में शायद हम इतने चरम तक नहीं जाते, यहां तक भी लोग चले जाते हैं जैसे ये घटना हुई, लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में यहां तक तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी जब हमें कोई बात सहन नहीं होती तो हम गुस्सा तो जरूर करते हैं, और गुस्से को मनोविज्ञान कहता है थोड़े समय का पागलपन, एंगर इज टेम्परेरी इनसैनिटी। जैसे एक पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है, वो समझ नहीं पाता, और हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जबान का घाव नहीं भरता, शायद आप भूल जाएं बोलकर लेकिन सुनने वाला जीवन भर नहीं भूलेगा, उसका असर हमारे संबंधों पर आ जाता है। संबंधों में प्रेम खत्म, आप एक ही छत के नीचे रहते होंगे तो भी कैसे रहेंगे, और कई बार उसके कारण संबंध भी टूट जाते हैं, हमेशा के लिए टूट जाते हैं, कई बार ये भी स्थिति होती है। तो क्यों हम गुस्सा करते हैं, सबसे आम कारण होता है किसी ने मेरी बात नहीं मानी, या जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं किया, या जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा व्यवहार हमसे नहीं किया। तो यहां पर एक ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि हरेक व्यक्ति के विचार भावनाएं व्यक्तित्व अलग अलग है, कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि जैसा हम सोचते हैं सामने वाला भी वैसा ही सोचता है, उनकी सोच हमसे अलग हो सकती है। तो हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, वो क्या सोचते हैं। और जब हम दूसरों को भी समझते हैं तो एक आपसी समझ के कारण फिर हम गुस्सा नहीं करते। दूसरा कारण बनता है कि गलती करते हैं कोई या काम नहीं करते हैं, तो लोग जस्टिफाई करते हैं कि काम कराने के लिए तो गुस्सा करना ही पड़ता है, अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। तो सही है काम कराने के लिए गुस्सा करना? नहीं, गुस्से से हम काम कराते हैं तो काम हो जाता है, ऐसे नहीं कि काम नहीं होता है। क्योंकि सामने वाले को भय होता है तो भय के कारण वो चुप रहता है और भविष्य परिणाम को सोच करके वो कुछ कहता नहीं है उस समय, लेकिन उसके मन की भावनाएं नेगेटिव हो जाती हैं और उसके कारण आप जैसा काम चाहते हैं वो वैसा काम नहीं करेगा। और दूसरी बात, मन में बदले की भावनाएं तो अवसर ढूंढते हैं, जैसे ही उनको अवसर मिलेगा वो आपके लिए कोई ना कोई समस्या जरूर पैदा करेंगे, तो उसके भविष्य परिणाम बुरे हो सकते हैं। अच्छा, कोई हमसे गुस्से से काम कराता है तो हमको पसंद आता है हमें लगता है काम तो करना ही है, पर थोड़ा प्यार से तो बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट से तो बात कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहे वो जैसा भी है उसे अपना सम्मान प्यारा होता है। तो फिर जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही हमें सबसे करना है। लेकिन हाँ, प्यार से अगर हम काम कराते हैं तो हमें थोड़ा धीरज ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि आप प्यार से जब बोलते हैं तो सामने वाले को इतना जल्दी बात समझ में ना आए, आपको दो बार तीन बार भी कहना पड़ सकता है। बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो माताएं कहती हैं कि गुस्से के अलावा तो चलता ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं। और गुस्सा करने पर वही स्थिति होती है कि भय के कारण उस समय बच्चे वही करेंगे जो आप कहेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, किताब उठा करके बैठ जाएंगे। लेकिन गुस्से में जो हम शब्द बोलते हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोल जाते हैं, क्योंकि हमें भी पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं गुस्से में। हाँ, जैसे कहेंगे भी नालायक है, हाँ ये कभी सुधरने वाला नहीं, जो भी आया आपने बोल दिया मानो। अब वो बच्चे के दिमाग में जाता है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे कहा या मेरे पिता ने मुझे ऐसे कहा। वो किताब उठा के तो पढ़ रहा है, आप खुश हैं कि देखो गुस्सा किया ना तो अब पढ़ रहा है वो, लेकिन वो सचमुच नहीं पढ़ रहा है, वो क्या सोच रहा है जो आपने बोला। और कई बार बच्चे वही बनने लगते हैं क्योंकि वही वही वो सोचते रहते हैं, तो फिर वैसा ही वो उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आप चाहते हैं बच्चा ये करे तो उसको समझाइए ऐसा क्यों करे, क्योंकि आज आईटी का जमाना है और आज बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों करें। तो अगर आप उनको कन्विंस कर देते हैं तो वो जरूर वो करेंगे जो आप उनको कहेंगे। तो लेकिन हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं होता है या इतना प्रेम से हम उनको नहीं समझा पाते, या एक बार में ही हम कहते हैं बता तो दिया ना, इनको समझ में नहीं आता है। तो अपनी बात सोचिए, क्या एक बार में हमें समझ में आ जाता है? हाँ, हम बदल जाते हैं एक बार में, हम जब हम हमारे ऊपर असर नहीं होता तो बच्चे हैं। और फिर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमसे सीखते हैं बच्चे, थोड़ा भी बड़े होंगे ना वो तो उन्हें पता है अपनी बात मनवाने के लिए माता पिता गुस्सा करते हैं, तो अब मुझे भी क्या करना है, अगर अपनी बात मनवानी है तो गुस्सा करना है, तो वो पलट के आपका सामना करते हैं और आप सोचते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है, हम ही सिखा रहे हैं ना। तो हम जैसा आचरण करते हैं बच्चे वही हमसे सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बदलने की जरूरत है, ना कि बच्चे ऐसा नहीं करते इसलिए हम गुस्सा करते हैं। फिर कई बार कोई हमारी कमी निकालते हैं, निंदा करते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं, खासकर जो हमारे समीप होते हैं वो हमारी कमियां जानते हैं और जैसे ही उनको मौका मिलता है तुरंत वो कहना शुरू कर देते हैं आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, किसी को भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं होता है। लेकिन कहा गया, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है क्या? क्यों कहा ये, निंदा जो करने वाला हमारा मित्र है, हमारी कमियां बताता है ना। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन सचमुच जब हम अपनी निंदा सुनते हैं तो जो हमारी निंदा करता है वो हमें मित्र नहीं लगता, क्या लगता है? दुश्मन लगता है कि ये ऐसा बोल रहे हैं हमारे बारे में और अभी हम बताएंगे ये क्या है। लेकिन सचमुच अगर हम पॉजिटिव हैं तब हम रियलाइज करते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1% भी मेरे अंदर है जरूर, क्योंकि बिना उसके तो कोई कहेगा नहीं। तो अगर हम अपनी उस कमी को दूर कर लेते हैं तो जीवन में हमारी प्रगति होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि वो कमी हमारे अंदर नहीं है, मानो सामने वाले को गलत फहमी है, या सुनी सुनाई बातों के आधार पर, या कई बार ईर्ष्यावश भी लोग नीचा दिखाने के लिए हमारे बारे में गलत बातें कह सकते हैं। तो जब हमें लगता है, हम अपने आप को जब देखते हैं और हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मानो आप ऑफिस जाते हैं, रोज टाइम पर जाते हैं, अपना काम बहुत ईमानदारी से जिम्मेवारी से करते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन कोई कारण से 2-3 दिन आपका काम ऊपर नीचे हो गया ना, आप ऑफिस भी लेट पहुंच रहे हैं, तो जो आपका क्रिटिक होगा उससे मौका मिल जाता है और वो बोलते हैं, अरे आपको पता नहीं, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये है ही लापरवाह। अब आपको लगता है कि हमेशा तो इतना अच्छे से काम करते हैं, अब आज किसी कारण से ऐसा हो रहा है तो मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। पर अगर हमें लगता है कि 1% भी वो मेरे अंदर है तो हम उसे ठीक कर लें, तो सामने वाले को शिकायत नहीं रहेगी। पर अगर नहीं है, हमें लगता है कि ये उनकी अपनी गलत फहमी है या जो भी है, तो फिर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं दें, अपने मन पर नहीं लें, क्योंकि हम मन पर ले लेते हैं उसे तो दुखी होते हैं। जब वो कमी है ही नहीं हमारे अंदर तो हम उसे क्यों स्वीकार करें। नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। हम ना चाहें तो कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता, हमें ध्यान ही नहीं देना। दुनिया में आज देखो, हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं, कितना लोग उनके बारे में बोलते रहते हैं, वो परवाह ही नहीं करते कौन क्या बोलता है, क्योंकि उनको पता है कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में एक दो को नीचा दिखाना कॉमन बात है, क्योंकि इसी के आधार पर ही पॉलिटिक्स चलती है, तो वो दूसरों के शब्दों पर ध्यान देते नहीं। ऐसे ही एक बार मदर टेरेसा को सब जानते हैं, वो कोड़ियों के लिए बहुत काम किया उन्होंने अपने जीवन में, तो उन्होंने एक मिशन हॉस्पिटल बनाया हुआ था। तो एक बार उनको फंड्स की जरूरत थी, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल तो दान से ही चलते हैं, तो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गई और उनको सारी अपनी प्रॉब्लम सुनाई, और वो जब सुना उन्होंने और समझा कि किस इंटेंशन से मेरे पास आई है, लेकिन उनका विचार उनके प्रति अच्छा नहीं था, तो फिर उन्होंने अपनी बात कही उनको, जो थोड़ा अपमानजनक थी, लेकिन उन्होंने सुना, मदर टेरेसा ने चुपचाप सुना। और फिर जब उन्होंने बोलकर पूरा किया तो फिर लास्ट में उन्होंने बोला, अच्छा ये तो आपने मुझे दिया, आप मेरे मरीजों के लिए क्या दे रहे हैं। हाँ, तो ये उनको लग गई बात कि इनको अभी भी अपने मरीजों का ख्याल है, मैंने इनकी इतनी इंसल्ट कर दी, उसकी परवाह नहीं है इनको। तो फिर उन्होंने सचमुच उनको सहयोग दिया जो सहयोग उनको चाहिए था। तो उन्होंने क्यों परवाह नहीं की, क्योंकि वो समझ गए कि ये जो बोल रहे हैं ये सब ऐसा कुछ है ही नहीं और ये तो इनकी गलत फहमी है, तो उन्होंने उस बात को ध्यान ही नहीं दिया। तो कोई भी ऐसी बातें हमारे बारे में जो सही नहीं है, फिर उस पर हम ध्यान ही ना दें, तो ना उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में बदले का भाव आएगा, ना ही हमारे मन में कोई दुर्भावना पैदा होगी। ऐसे ही मानो हम रिएक्ट करते हैं, कईयों की आदत होती बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, बाद में फिर सोचते हैं, काश उस समय हम ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, तो ऐसी स्थिति होती है तो हम थोड़ा पोस्टपोन करें उसको कि हम बोलेंगे लेकिन 10 मिनट के बाद। क्या फर्क पड़ता है 10 मिनट में? उस 10 मिनट में आपको समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं है, आपकी भी गलती है, तो वो परमानेंट ही पोस्टपोन हो जाता है। अब कहने की जरूरत ही नहीं है, दोनों की गलती है। पर अगर लगता नहीं सामने वाले की गलती है, उसको सुधारना ही चाहिए, नहीं बताएंगे तो वही गलती दोबारा होगी, तो अब आप बोलेंगे लेकिन शांति से बोलेंगे, क्योंकि तब तक आपका आवेश कम हो जाता है। वही बात को आप अच्छे शब्दों में कहेंगे तो सामने वाला उसे स्वीकार करेगा। हाँ, कोई बात किसी को गुस्से से बोलो और कोई बात किसी को प्रेम से बोलो, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? पड़ता है नहीं पड़ता है ना? तो गुस्से से बोलेंगे तो गुस्सा गुस्से को जन्म देता है, वो भी गुस्से से बात करेगा और उसको समझना होगा तो भी वो समझेगा नहीं, हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों गुस्से वाले स्वभाव के। घर में एक गुस्से वाला एक शांति वाला हो तो बात नहीं बिगड़ती है, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले थे तो बात बात में कलह हो जाती थी, घर में अशांति रहती थी। तो एक दिन जो है वो उनकी पड़ोस की बहन आई और उसने बहन को कहा कि मेरे घर में मैंने कथा रखी है, आपको कथा में आना है। ठीक है, आएंगे कथा में। तो गई कथा में तो देखा एक पंडित जी हैं, कथा कर रहे हैं। और उस दिन उसका मन बहुत ही अशांत था, तो उसने सोचा मैं पंडित जी से उपाय पूछूंगी। उपाय पूछेंगे माना जैसे मैंने कहा वो कोई मंत्र बताते हैं, कोई अंगूठी बता देते हैं, कुछ भी, घर में थोड़ा शांति हो जाए। तो उसने सोचा पंडित जी को मैं बात करूंगी। तो उसने कथा के बाद पंडित जी को बात किया, अपनी समस्या सुनाई, कहा पंडित जी कोई उपाय बता दीजिए। तो पंडित जी ने कहा बता सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप प्रॉमिस करती हो, वादा करती हो कि मैं जो कहूंगा वो आप करोगी तभी मैं आपको बताऊंगा। उसने कहा जरूर, मैं पूछी इसलिए रही हूं, मैं करूंगी और मैं वादा करती हूं आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई, उसे दिया, कहा देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय ही इसमें से कुछ घूंट पानी अपने मुंह में रख लेना, पानी पीना नहीं, मुंह में रहेगा। वो भी समझ गई जैसे आप समझ गए लेकिन उन्होंने वादा करवा लिया था तो चुपचाप पानी लेके चली गई वो। अब रोज की बात थी, घर में कोई बात हुई, पति ने शुरू किया बोलना, तो आज वो प्रॉमिस करके आई थी तो उसने पानी मुंह में रखा और पानी मुंह में था तो बोल नहीं सकती थी, तो चुप थी, बोलना तो चाहती थी लेकिन पानी मुंह में रखना था। तो फिर पति ने सोचा कि रोज तो बराबर जवाब देती है, आज इसको क्या हुआ है ना। तो कई बार सुनने की आदत होती है ना, तो किसी का चुप रहना भी पसंद नहीं आता, तो थोड़ा जोर जोर से बोला कुछ तो जवाब देगी, पर उसने नहीं दिया। उसको पंडित जी का वो डर था कि मैं उन्होंने बोला मुझे पानी रखना मुंह में। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, फिर भी उसने पानी मुंह में रखा, आज भी वो चुप थी। हाँ, तो उनके मन में विचार चला कहीं इसने बदल लिया है अपने आप को, होता है ना, थोड़ा भी हो सकता है रियलाइजेशन हो गया हो कुछ। फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ तो उनको लगा सचमुच इसने तो बदल लिया है, अब तो बोलती ही नहीं है बिल्कुल। ऐसे ही कुछ बार और भी हुआ, कुछ उन्होंने थोड़ा ट्राई भी किया तो देखा हाँ चुप है, क्योंकि वो मुंह में पानी रखती थी। तो फिर उनका अपने ऊपर ध्यान गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों में ज्यादा ही बोलता हूं, मुझे भी इतना नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी दो लोग नहीं बोलते तो बात बढ़ती नहीं और घर में शांति हो गई। अब ये बहन इतनी खुश, हाँ सचमुच पंडित जी ने जो उपाय बताया उसने काम किया, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो गई पंडित जी के पास, पंडित जी आपने जो उपाय बताया उससे मेरे घर में शांति हो गई, मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आई हूं लेकिन वो पानी खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा कि वो कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए पीने का पानी था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप शांत रह जाओ। देखो आप शांत रह गई तो आपको कितने अच्छे परिणाम मिले, तो आप सदा ही ऐसे रहो, आपके घर में सदा ही शांति रहेगी। तो कुछ भाई बहने कहते हैं बहन जी कहानी तक ठीक है, हम चुप नहीं रह सकते क्या कहेंगे, चुप रहेंगे या रह सकते नहीं रह सकते? जो समझते हैं हम रह सकते हैं, अब कई बातें हो सकती हैं। तो यही सहन शक्ति की बात आती है ना, कि अब कोई मेरी बात नहीं मान रहा, या कोई मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, या कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, या मेरे मन इच्छित व्यवहार नहीं कर रहा, तो भी हम शांत रह जाएंगे। तो ऐसे जो समझते हैं कि हाँ हम रह सकते हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, काफी उठा रहे हैं। हाँ, तो आपने हिम्मत रखी तो ताली बजाइए अपने लिए। हम कर सकते हैं, हाँ, ये हमारी चॉइस है। किसी भी परिस्थिति में हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं, ये किस पर निर्भर करता है? हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये हमारी शक्ति है, जैसे कहा सहन शक्ति, इसे ही हम सहन शक्ति बोलते हैं। क्योंकि ये आसान तो नहीं है, अगर हम प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं तो वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती। कैसे आ जाती? जैसे आप देख रहे हैं, एक पेड़ जब फलों से लगता है तो बच्चा उसको पत्थर मारता है, फिर भी क्या मिलता है उसको? फल। तो प्रकृति में भी एक गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे देती है। तो इंसान जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्या वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि कोई हमारे साथ कैसा भी करे, फिर भी हम उसके साथ कैसा करें? श्रेष्ठ व्यवहार करें, सुख देने वाला व्यवहार करें, मधुर व्यवहार करें। कर सकते हैं ना, आसान तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं, असंभव भी नहीं है। इसलिए हमने देखा जितने भी महान पुरुष हुए उनका जीवन साधारण मनुष्यों के जैसा नहीं था। जैसे को तैसा देना है ऐसा उनका जीवन नहीं था। उनका जीवन था कोई कैसा भी करे लेकिन उनका व्यवहार दया, प्रेम, क्षमा, करुणा का रहा। और यही कारण है कि वो समाज में इतने बड़े परिवर्तन ला सके, वो सबके प्रेरणा स्रोत बने। अब ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? हे पिता, तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो सूली पर चढ़ते वक्त भी उनके मन में क्षमा भाव था। उन्होंने ये नहीं कहा हे पिता तू इनको सजा देना, कह सकते थे ना, क्षमा करना, मैंने जीवन भर इनकी इतनी सेवा की, आज ये मेरे को सूली पर चढ़ा रहे हैं। ऐसा भी तो भगवान को कह सकते ना। हम क्या करते हैं कई बार, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम भगवान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भगवान तू क्या कर देना इनका, कहते नहीं कहते? तो हम तो शुरू हो जाते हैं कि भगवान इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसको भी ऐसा ही मिले, इससे भी बुरा मिले। तो लेकिन नहीं, वो उन्होंने कभी नहीं कहा अपने जीवन में किसी के लिए भी। आज हमारे भारत में भी बहुत ऐसे संत हुए, महात्मा गांधी तो थे ही, और भी ऐसे अनेक महान संत हुए हैं। जैसे संत एकनाथ का नाम सुनते हैं हम, ऐसे तो बहुत से प्रसंग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ऐसे इतना सब हम इस सेशन में नहीं कर सकते, लेकिन संत एकनाथ के जीवन की घटनाएं उनके लिए प्रसिद्ध था। उनको गुस्सा नहीं आता है तो लोग जानबूझ करके उनको गुस्सा दिला के टेस्ट करने की कोशिश करते थे। तो एक बार ऐसे ही वो महाराष्ट्र के संत थे, यहाँ आए नदी में स्नान करने के लिए, हरिद्वार में गंगा नदी में नहाने के लिए। तो जब वो नहाकर लौट रहे थे तो एक पठान है ना, उसने सोचा कि देखते हैं, तो उसने छज्जे पर खड़े होकर उन पर थूक दिया। तो वो फिर से चले गए स्नान करने के लिए, उन्होंने देखा भी नहीं कि किसने किया। फिर जब लौट कर आए तो फिर थूक दिया उसने, क्योंकि वो जानबूझ कर कर रहा था ऐसा। फिर वो गए, फिर स्नान करके आ गए, ऐसे कितनी बार उसने किया, हर बार उन्होंने देखा भी नहीं और जाकर फिर से स्नान कर लिया। तो आखिर में वो ऊपर से नीचे उतर के उनके सामने आया और उनका कि आपके साथ ऐसा करने वाला मैं हूं, आपको मुझे कुछ कहना है? को लगा मुझे सामने देख के कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई, अच्छा हुआ तुम मेरे सामने आ गए, मैं तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इतनी दूर महाराष्ट्र से यहाँ गंगा नदी में स्नान करने आया हूँ, मैं एक ही बार स्नान करके चला जाता, अब आज तुम्हारे कारण मैंने इतनी बार स्नान किया। हाँ, तो देखिए सोच ही अलग है, हम किस परिस्थिति में किस दिशा में सोचते हैं उसमें भी हम अपना भला कैसे निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक सोच। तो जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति हुए दुनिया में, उन्होंने अपने विचारों की दिशा को इस तरह से बदला कि हर बात में हमारा भला है, देखने वाले को बुरा लग रहा है लेकिन उसमें भी हमारा भला हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो ऐसे हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है जब प्रतिदिन हम ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ज्ञान का श्रवण करते हैं और परमात्मा जो सर्व शक्तियों के सागर हैं, सर्व शक्तिवान हैं, उनसे हम योग लगाते हैं। मानवता के प्रति वो प्रेम, दया, करुणा का भाव, क्योंकि भगवान तो क्षमा का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है, तो वो गुण हमारे में भी विकसित होने लगते हैं। और जब किसी के प्रति प्रेम होता है तो हम सब जानते हैं कि प्रेम में किसी की गलती हमें गलती नहीं लगती, और अगर प्रेम नहीं है, द्वेष है, तो उसकी छोटी गलती भी हमें क्या लगती है, बड़ी लगती है। तो जब हम पूरी मानवता से प्रेम करते हैं तो फिर निश्चित रूप से हम किसी की छोटी मोटी बातों को अपने दिल में नहीं रखते और उन्हें हम सहज क्षमा कर देते हैं, हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी है समाने की शक्ति। हम चित्र में सागर देख रहे हैं, सागर बहुत विशाल होता है और जब सागर विशाल है, माना हमारा हृदय अगर विशाल है, उसकी तुलना हम उससे करते हैं, तो फिर इस संसार में कितने भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, जैसे सागर में भी लहरें उठती रहती हैं लेकिन भीतर में सागर एकदम शांत होता है। तो जीवन में परिस्थितियों रूपी लहरें, माना निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, ये अप्स एंड डाउन है ना लाइफ के, ये हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी जैसे सागर भीतर में शांत है, ऐसे ही योगी का चित्त शांत रहता है, स्थिर रहता है, वो दुख में बहुत दुखी नहीं और सुख में बहुत गर्व में नहीं आ जाता। और ऐसे ही सफलता में और प्रशंसा में, जो हम कहेंगे कि प्राप्तियां हैं, और ऐसे ही असफलता में, हानि में, वो बहुत निराश हताश नहीं होता है। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि जैसे इसमें दिखाया है चित्र में, सागर में अनेक नदियां भी आती हैं, कैसा भी जल लेकर के आती हैं, वो सब उसमें समा जाता है, सागर कभी अपना किनारा नहीं छोड़ता और सागर की सतह भी स्वच्छ रहती है। हालांकि नदियों से गंदगी पड़ती है उसके अंदर, लेकिन गंदगी क्या होती है, लहरें उसे उठाकर बाहर फेंक देती हैं, और कोई भारी चीज होती है तो सागर के तले में चली जाती है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है। इस संसार में हम अच्छी बुरी सब बातें देखते सुनते हैं, लेकिन जैसे सागर उसे ग्रहण नहीं करता, रखता नहीं है ना, फालतू को उठाकर बाहर कर देता है, ऐसे ही उन बातों पर जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उन पर हम ध्यान नहीं देते। कबीरदास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। इसका मतलब एक संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, जैसे सूप, अनाज साफ करने वाला सूप, कचरे को फेंक देता है और वो अनाज को रख लेता है जो काम की चीज है। ऐसे इस दुनिया में भी जो हमारे लिए सार्थक है उसे ही हम समाएं, ग्रहण करें, बाकी सब को देखते हुए भी नहीं देखना और सुनते हुए भी नहीं सुनना। और दूसरा समाने की शक्ति का स्वरूप है कि मानो कोई हमारे निकट मित्र हैं, वो उनको कोई समस्या है, वो हमें अपनी बात कहते हैं, हम सुनते हैं, उनको राय भी देते हैं, फिर वो ये हमें कहते हैं कि देखो ये मेरी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना, और हम विश्वास भी दिलाते हैं, लेकिन होता क्या है, हमारा कोई अपना होता है जिसे हम सुना देते हैं, फिर कहते हैं देखो ये इनकी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना, और फिर वो भी यही कहते हैं दूसरे को, उनका भी कोई अपना होता है कि पर्सनल बात है, किसी को मत कहना, और जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है, और उसी रूप में नहीं फैलती, क्योंकि हर कहने वाला अपनी बात भी उसमें जोड़ता है, उसने क्या समझा, हर एक की अपनी अपनी समझ होती है ना, उसने क्या समझा वो अपना ऐड करता है, वो बात बदलती जाती है और कई बार इतनी बदल जाती है कि क्या हो जाता है, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। और घूम फिर करके जब उसके पास तक पहुंचती है तो उसको ठेस लगती है कि मैंने इतना विश्वास किया। ओम शांति। तो हम समाने की शक्ति पर बात कर रहे थे। हमने कहा अगर हम किसी की बात नहीं समा पाते और वो बात फैलती है तो वो क्या रूप लेती है, और कई बार उससे सामने वाले को बहुत धक्का पहुंचता है और वो समझते हैं कि मैंने इतना विश्वास किया और फिर भी मुझे धोखा मिला, तो उससे संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। कई बार सालों की दोस्ती होगी वो उसके कारण टूट जाएगी। एक मिसाल देते हैं आपको कि कैसे बात बदलती है जब वो फैलती है। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, वो उन्हें किसी दूसरे गांव जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे भोजन दे देना क्योंकि हो सकता है कि मुझे लौटने में देर हो जाएगी। तो उन्होंने टिफिन बनाकर दे दिया और वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे भोजन करने बैठे। तो जैसे ही भोजन लगाया, पेड़ की डाली पर पक्षी बैठा था, उसी समय वो पक्षी ने बीट कर दी और वो खाने की थाली में बीट पड़ गई। अब वो तो ब्राह्मण थे, उनके लिए शुद्धि का महत्व था, इसलिए उन्होंने खाना छोड़ दिया और गांव जाने का विचार भी बदल दिया कि अभी आज नहीं जाते हैं, फिर कभी जाएंगे। घर वापस आ गए तो पत्नी ने पूछा, आप तो गांव गए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी का स्वभाव मालूम था कि अगर इसको पता चला तो पूरे गांव को पता चलेगा। तो चलते रहे थोड़ा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ गई, क्या हुआ, क्यों वापस आ गए? तो फिर उन्होंने उसको बता दिया कि ऐसा हुआ, जब मैं खाना खाने बैठा तो खाने में पक्षी की बीट पड़ गई, तो फिर मेरा विचार बदल गया, बाद में जाएंगे। तुम ये बात किसी को कहना मत, थोड़ा सा उन्होंने जोर देकर के उसको बोला, किसी को बताना मत। तो उसने कहा, क्यों, मैं क्यों बताऊंगी? लेकिन इंसान स्वभाव से मजबूर होता है। दूसरे दिन जब वो गई कुएं पर पानी भरने, तो उसकी चार साथी जो औरतें थी वो वहां थी, और बात बात में ही उसने ये सारी बात कह दी कि पंडित जी के साथ क्या हुआ। अब बताने के बाद उसे याद आया कि मुझे वो बताना नहीं था लेकिन मैंने बता दिया। अब सब एक जैसा नहीं सुनते है ना, उसमें से एक ने सुना पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट गिर गई की जगह पक्षी गिर गया, फिर उसको थोड़ा बड़ी बात लगी, पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, तो उसने और चार लोगों को सुनाया। तो उसमें से एक ने सुना, आधा आधा सुनते ना, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने चार लोगों को बात की, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो कोई चमत्कार वाली बात हो गई कि पक्षी निकलते हैं। बात पंचायत तक पहुंच गई कि हमारे गांव में ऐसे पंडित जी जिनके मुंह से पक्षी निकलते हैं, देखना चाहिए कैसे निकालते हैं। तो बुलाया उनको पंचायत में, तो वो सोचने लगे क्या हुआ, मुझे पंचायत में बुलाया है। पहुंचे तो पता चला कि पक्षी निकाल कर दिखाना है। तो सोचने लगे ये बात कहां से आई, पक्षी निकालने वाली। फिर थोड़ा दिमाग चलाया तो समझ में आया कि ये तो पत्नी की करामात है। फिर अब क्योंकि पंचायत में थे तो सोच लिया कि क्या जवाब देना है। जब उनको कहा गया पक्षी निकाल कर दिखाओ, तो उन्होंने कहा हाँ मैं निकाल सकता हूं, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। सब चले गए। तो कहानी सुनाने का मतलब क्या है कि बात क्या थी और जब वो फैली तो उसका रूप क्या हो गया। इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से बाहर निकाल दो, लेकिन हम नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि कान में जब बात जाती है तो कान का शेप ही क्वेश्चन मार्क का है ना, और दोनों कानों के बीच में दिमाग है, तो दिमाग क्वेश्चन करने लगता है, अच्छा ये ऐसी बात है, अच्छा ये ऐसे भी हैं, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था, हाँ ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब उनके बारे में जो भी हम सुनते हैं उसका फिर हम मंथन करने लगते हैं, फिर जो हम समझते हैं वो जाकर के दूसरों को मुंह से बोलते हैं, कान से नहीं निकालते, कहां से निकालते हैं। तो इसीलिए समाने की शक्ति की कमी होने के कारण हम अपने परिवार में, समाज में, जो हमारे संबंधों में मधुरता रहनी चाहिए उस मधुरता को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एक दो की कमजोरियों को हम समा नहीं पाते। ज्यादातर हम वही बातें करते हैं जो कमियों की बातें होती हैं। गुणों की बात करना बहुत कम, 100 में से कोई एक होंगे जो किसी की तारीफ या प्रशंसा की बात फैलाते होंगे, लेकिन ज्यादा हम क्या फैलाते हैं, ज्यादा क्या फैलाते हैं, कमियां फैलाते हैं किसी की भी। तो हम राजयोग में ये सीखते हैं, राजयोग के अभ्यास से हमारे अंदर गंभीरता का गुण आता है, यानी अगर किसी की राज की बात है या किसी की कोई कमी की बात भी है तो हम उसे जानते हुए समझते हुए भी नहीं कहते, क्योंकि ये सब अपना ही परिवार है। और अगर कहना भी है तो शुद्ध भाव से, जहां वो बात कहनी है, यानी जो निमित्त है उसके जिम्मेवार है, उसको भी वो हम शुभ भाव से वो बात कहते हैं। तीसरी और चौथी शक्ति है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। दोनों शक्तियां भी मनुष्य के जीवन में साथ चलती हैं और हमें जीवन के हर मोड़ पर इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बहुत बार उलझन में होते हैं। उलझन, दुविधा, माना करूं कि नहीं करूं, ये ठीक है कि गलत है, उचित है कि अनुचित है, फिर हमें परखना भी है और निर्णय भी लेना है। जो निर्णय हम लेंगे वही हम करेंगे और उसी अनुसार हमारा निश्चय विजय होगी कि नहीं होगी, तो वो उस पर निर्भर करता है। तो आप देख रहे हैं चित्र में एक जौहरी है, एक जौहरी को आभूषणों की परख होती है या रत्नों की परख होती है, हीरे की परख होती है कि वो असली है या नकली है, या कितना मिलावट वाला है, अगर सोना भी है तो कितने कैरेट का सोना है, वो ज्ञान है उसके अंदर, उसके आधार पर ही वो अपने व्यापार में सफल होता है। अगर वो ये परख नहीं सकता तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। एक डॉक्टर है, उसे बीमारी की परख होती है क्योंकि उसे बीमारी का ज्ञान है, तो वो मरीज को देखते ही परख लेता है कि ये रोग है और उस अनुसार ही उसका वो इलाज करता है, तभी स्वस्थ होते हैं। ऐसे ही एक जज है, उसे कानून का ज्ञान है, तो जब अपराधी उसके सामने आता है तो तुरंत वो उसको परख लेता है और निर्णय ले सकता है कि इसका सही न्याय क्या होगा। तो ज्ञान पर परखने की शक्ति निर्भर करती है। जितना जिस भी क्षेत्र में हम हैं उससे संबंधित संपूर्ण ज्ञान हमारी परखने की शक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, शुद्ध होती है, और उसके आधार पर, जैसे हम कहेंगे शुद्ध जल में हम तले तक देख सकते हैं, तले में भी क्या चीज है वो हमें दिखाई देती है, तो हम व्यक्ति की भाव भावनाओं को भी परख सकते हैं। आज इंसान अंदर में कुछ और होता है और बाहर में वो कुछ और व्यवहार करता है, ऐसा बहुतों के साथ, सभी नहीं होते ऐसे, लेकिन बहुतों के साथ ऐसा होता है कि वो आपके सामने बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई करते हैं। मानो कोई व्यक्ति हमारे प्रति ऐसा भाव नहीं रखता या इस तरह का व्यवहार करता है, और उनसे हमें सावधान रहना है, और अगर हम उनकी भावनाओं को परख लेते हैं तो फिर हम सुरक्षित हो जाते हैं, उस तरह का हम निर्णय ले सकते हैं। तो जीवन में, व्यवहार में सफल होना या अपने कार्यों में सफल होना, इसके लिए परखने की और फिर निर्णय करने की शक्ति, जैसे दिखाया तराजू की तरह निर्णय की शक्ति जो है वो काम करती है। तराजू के तीन भाग हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। तो सही तौल के लिए कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित और पल्ले बराबर होने चाहिए। निर्णय शक्ति के लिए भी हमारी मन बुद्धि की स्थिति यही होनी चाहिए, बुद्धि एकाग्र हो, मन संतुलित हो और निष्पक्ष हो। कई बार हम बायस्ड होते हैं, माना बायस्ड होने का मतलब पूर्वानुमान, लोगों के पास्ट को मन में रखते हैं कि ये ऐसे थे, माना अभी भी ऐसे ही होंगे, लेकिन व्यक्ति के जीवन की परिस्थितियां मनस्थितियां बदलती रहती हैं, तो जरूरी नहीं कि वो जैसे पहले थे वैसे अभी होंगे, पर हमारे निर्णय उनको वही सोच करके हम कई बार करते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो इसीलिए वर्तमान समय में रहते हुए अगर हमारी मन बुद्धि एकाग्र है, शांत है, संतुलित है, तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। पर अगर मन उलझन में है, टेंशन में है, या किसी भी प्रकार के बहुत सोच विचार में है, तो हमें वो स्पष्ट नहीं समझ में आता। अब जब हम योग का अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास से हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्त एकाग्र होता है, और परमात्मा के साथ संबंध होने के कारण उनसे भी हमें अंतर्दृष्टि मिलती है, और वो भी हमें निर्णय लेने में मदद देते हैं, तो हम जीवन में सदा ही सही निर्णय कर पाते हैं। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, और समस्याएं आती ही रहती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन जीवन में समस्या ना आती हो, है ना। तो उसमें महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे सामना करते हैं उसका। जैसे आपको एक परिस्थिति दिखाई चित्र में, किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो कई बार ऐसी घटना होने पर कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं या इतने हताश हो जाते हैं कि जैसे उस व्यक्ति के जाने के साथ उनका भी जीवन समाप्त हो गया। वो दिनों तक, महीनों तक, क्या सालों तक भी सामान्य नहीं हो पाते, और कई बार दवाइयों के सहारे ही उनको अपनी जिंदगी निकालनी पड़ती है। पर एक योगी ये समझता है कि ये शरीर की मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की तो कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्मा का जब तक हमारे साथ कर्म संबंध था, तब तक वो हमारे साथ थी, क्योंकि जितने भी हमारे समीप के संबंध होते हैं वो लेन देन के संबंध होते हैं, और जब वो पूरा हो जाता है तब आत्मा अपने आगे की भविष्य जीवन के लिए जाती है। तो अब वो आत्मा गई है, तो फिर हम उनके लिए, उनके भविष्य जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं या शांति का दान देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो चला गया वो तो वापस लौट कर आने वाला नहीं है, आ जाएगा क्या, है ना। तो अगर हम बहुत दुखी होते हैं तो वो दुख भी उस आत्मा तक पहुंचता है। तो हमें हमेशा ही अपने कर्तव्य का जरूर पालन करना है, उस आत्मा के निमित्त जो भी था, और जो भी हमारे जीवन में इतने समय तक साथ रहते हैं उनको हम मिस तो करते हैं, उनको याद तो करते हैं, लेकिन याद करते हुए हम दुखी ना हो, बल्कि और ही उनके भविष्य जीवन के लिए हम सुख की कामना करें कि वो जहां भी रहें सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो इस तरह से हम सहज उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं। और भी कुछ जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे किसी को व्यापार में हानि हो गई, कहीं चोरी हो गई, आग लग गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो एक योगी कर्म की गति को जानता है कि जो भी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। तो फिर हम धैर्य रख पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्यों हो रहा है। एक बार हमें समझ में आ जाए कि ये सब मेरे जीवन में क्यों घट रहा है, तो हमारे लिए शांत रहना और उसे पार करना आसान हो जाता है। और फिर योगी माना ईश्वर का साथ है, ईश्वर से हमारा संबंध है जो सर्व समर्थ है, और जब मेरा साथी सर्व समर्थ है तो फिर हमें किस बात से डरने की जरूरत है, है ना। इसलिए कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। हमारा मनोबल इतना ऊंचा होता है कि बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है, उसे हम सहज पार कर जाते हैं और हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। मैं इसे थोड़ा जल्दी पूरा करती हूँ क्योंकि डाइनिंग में आपका इंतजार हो रहा है। फिर छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति। एक राजयोगी सभी का सहयोगी होता है, क्योंकि हमें ये समझ मिलती है कि हम सब कौन है, आत्माएं हैं, और हम सब आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। परम धाम से हम इस सृष्टि पर आए हैं, तो आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं और उस नाते से पूरा विश्व ही एक परिवार है। हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम माना गया, लेकिन सही अर्थों में ये वसुधा एक परिवार कैसे है हम समझ पाते हैं। और फिर केवल 4, 6, 10 लोगों का परिवार मेरा परिवार है, इनके प्रति ही मेरा सहयोग है या इनके प्रति हमारा शुभ भावना है, नहीं। लेकिन विश्व की सभी आत्माएं ही हमारा अपना परिवार है और किसी को भी हमारे सहयोग की जरूरत है और हम सहयोग कर सकते हैं तो हम अवश्य वो सहयोग करते हैं। और जहां सहयोग होता है वहां एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं, मतलब इतनी शक्ति बढ़ जाती है और बड़े बड़े कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। तो आप चित्र में देख रहे हैं, भागवत में प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण ने गोकुल में जब बाढ़ का संकट था तो एक उंगली पर पर्वत उठाया, पर वो केवल कृष्ण की उंगली नहीं थी, लेकिन जो गोप गोपियां थे उन्होंने भी अपनी एक एक उंगली का सहयोग दिया और वो पर्वत उठ गया। तो वास्तव में कोई मिट्टी का पर्वत उठाने वाली बात नहीं है, ये तो यादगार है, एक चरित्र है। किसका यादगार है कि परमात्मा जब इस धरा पर आकर के परिवर्तन का कार्य करते हैं। अब हमको संदेह हो सकता है कि इतना बड़ा कलयुग क्या बदल करके सचमुच ये सतयुगी सृष्टि आ सकती है, क्या ये संसार बेहतर संसार हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ये संसार मनुष्य आत्माओं से बना है और जब उनमें परिवर्तन आता है तो मनुष्य आत्माएं ही उसे नर्क बनाती हैं और वही मनुष्य उसे ही फिर स्वर्ग भी बना सकते हैं। तो परमात्मा के इस कार्य में कि वो कोई जादू मंत्र की छड़ी नहीं घुमाते, लेकिन उनके साथ सभी आत्माओं का सहयोग होता है और उस सहयोग की शक्ति से ये इतना बड़ा कार्य संभव हो जाता है, यानी ये कलयुगी पर्वत उठ जाता है। तो ये सहयोग की शक्ति की कमाल है। फिर कभी भी हम ये नहीं सोचे कि हम अकेले कुछ कर लेंगे उससे क्या होने वाला है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखते हैं, हम कुछ परिवर्तन लाते हैं तो वो अनेकों को प्रेरणा देता है और अनेक हमारे सहयोगी बन जाते हैं। जैसे हम गांधी जी के बारे में सुनते हैं, गांधी जी ने जब आजादी का विचार किया, आजादी के लिए कार्य करना शुरू किया, वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, दृढ़ता रखी, तो धीरे धीरे पूरा भारत उनके साथ जुड़ता गया और आज भारत आजाद हुआ। बाबा ने जो कार्य किया उसके लिए भी हम सब जानते हैं, पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने इस कार्य को प्रारंभ किया, तब वो भी अकेले थे, लेकिन आज उनकी हिम्मत रखते हुए इतने सब मनुष्य आत्माएं इस ईश्वरीय कार्य से जुड़ चुकी हैं और आने वाले समय में भी ये कार्य सफल होगा। और जो लक्ष्य है जो बताया आपको, सतयुगी सृष्टि और स्वर्णिम युग की स्थापना होगी। फिर 7वीं शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति और 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी मनुष्य के जीवन में साथ साथ चलती हैं। कभी हमें विस्तार करना होता है और कभी हमें बातों को समेट कर एकदम फुल स्टॉप लगा देना होता है, क्योंकि अगर हम बहुत विस्तार में जाते हैं तो हमारी मानसिक क्षमताएं कम होने लगती हैं, और यदि हम उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पाते जैसे कहा, तो वो फुल स्टॉप न लगाने के कारण और शक्तियों को भी हम कार्य में नहीं लगा पाते हैं, ला पाते हैं। तो ये चित्र में कछुए का चित्र दिखाया है। कछुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है और वो जब खाता चलता है तो अपने अंग बाहर निकालता है, नहीं तो हमेशा अपने अंगों को खोल में रखता है और सुरक्षित रहता है। तो उसके सुरक्षा का आधार उसका खोल है। तो ऐसे ही योगी का जीवन होता है कि जब हमें कार्य करना है, अपनी कर्मेंद्रियों को हम कार्य में लगाते हैं, कर्म करते हैं, मन बुद्धि को भी एकाग्र करते हैं, कुशलता से उसे संपन्न करते हैं, और जब कार्य समाप्त हो गया तो अपनी कर्मेंद्रियों से अपने आप को न्यारा करके हम आत्मिक स्थिति में मन को स्थित करते हैं और आत्मिक शांति, आत्मिक सुख का अनुभव। तो हमारा खोल क्या हुआ, अपनी आत्मा के सार में मन को ले जाना, यहां तक कि हम परम धाम में परमात्मा की याद में भी अपने मन को स्थित कर सकते हैं। तो मन संसार से भी न्यारा हो जाता है और मन की स्थिति ऊंची हो जाती है। तो मन जब इस स्थिति में होता है तो जैसे कछुआ सुरक्षित हो जाता है, ऐसे ही हम भी सांसारिक परिस्थितियों से सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, नीचे पहाड़ हैं, नदियां हैं, ट्रैफिक है, उससे उसको कोई बाधा नहीं, क्योंकि वो उससे इतना ऊंचा है। तो जब मन की स्थिति ऊंची होती है तो संसार की ये बातें भी हमारे लिए जैसे नहीं के बराबर होती हैं, क्योंकि उस ऊंची स्थिति से हम उसे पार कर लेते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं उनसे। तो ये योगी की कला होती है कि जब चाहे वो शामिल हो जाए, जब चाहे वो न्यारा कर ले अपने आप को। तो ये शक्ति हम आ जाती है। और समेटने की शक्ति, यानी जब हमें कहीं यात्रा करनी होती है, अभी जैसे आप यात्रा पर आए तो हम कितना सामान लेते हैं, बहुत आवश्यक जो हमें चाहिए, हम सारा घर उठा करके नहीं ले जाते हैं। तो हमारा जीवन भी एक यात्रा है, और इस यात्रा में भी हमारे साथ हम क्या लाए और क्या ले जाएंगे, हम कहते हैं ना क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर के जाना है, तो साथ में हम क्या ले जाएंगे, महत्व उसका है। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ये भी सत्य हम जानते हैं, ते आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन जीवन भर हम इस सत्य को भूले रहते हैं, और इस हम क्या समझते हैं, जीवन सदा ही है, और इसीलिए मोह माया विषयों में मन लगा रहता है। तो तीन तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा तो मेरा है ही, आपका भी मेरा कैसे हो जाए, उस कोशिश में लगे रहते हैं। तो आज के समय में हम देखते हैं मेजॉरिटी ऐसे ही है, इसीलिए दुनिया में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, आपका नहीं चाहिए लेकिन मेरे पर तो मेरा ही अधिकार है, वो हम आपको नहीं दे सकते। साधारण मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है कि मेरे में जो मेरा है उसमें मोह होता है, उसे हम नहीं छोड़ना चाहते। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं आध्यात्मिक, जो सोचते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना तो हम इस दुनिया में कुछ लेकर के आए, और ना ही आज कितना भी मिलियनर क्यों ना हो, एक रुपया भी ले जाएगा साथ में, ले जाएंगे सब कुछ यहीं। कोरोना के समय बहुत लोगों ने ये अनुभव किया कि कितना भी कुछ था लेकिन समय पर क्या वो कुछ कर सका, तो ये हम कुछ नहीं ले जाने वाले। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है, क्या ले जाते हैं? तो एक योगी इस राज को जानता है कि हम अपने साथ श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ले जाते हैं, वही आत्मा संस्कारों के रूप में अपने साथ ले जाती है, जो उसकी भविष्य प्रारब्ध होती है या भविष्य अनेक जन्मों का भाग्य होता है। तो इसीलिए हम पूरा समय केवल अपने आत्मनिर्वाह के लिए, या हम कहेंगे कि अपने संबंधों के निर्वाह के लिए, या केवल अपनी जिम्मेवारियां निभाने के लिए ही नहीं देते, लेकिन कुछ समय हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी देते हैं, ताकि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकें, और वो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ही आत्मा ले जाने वाली है, वही उसकी अविनाशी कमाई है। तो ये लगेज हमारे साथ जाएगा ना, बाकी सब यहीं रह जाने वाला है। तो इस तरह से ये जो शक्तियां हमें अपने जीवन में मिलती हैं, उसके साथ साथ गुणों का भी विकास होता है, उससे हमारी विकारों पर विजय होने लगती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत, इन सब पर विजय होने से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, और यहां भी हम जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं, और अपने परिवार और समाज के लिए भी हम वो प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, या परमात्मा के उस परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। तो पर ये एक दिन में नहीं होता है कि हम सोचे कि हाँ एक दिन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करने से धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि ये परिवर्तन स्वतः ही हमारे अंदर होता जा रहा है, और हम इन शक्तियों के आधार पर अपने आप को समर्थ महसूस करने लगते हैं कि हम जो चाहें, जो भी असंभव समझा जाता है उसको भी हम संभव बना सकते हैं। तो मैं यही समाप्त करती हूँ उसको। ओम शांति।